ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. தானேஸ்வர் பாப் தாதா, சபி பூர்வஜ் தாதியா, சமஸ்த் மதுவன் நிவாசியோ கி தரப் சே, ஹமாரி தீதி ஜி கி தரப் சே, ஆப் சபி ஜோ பி பாய் பட்டே பஹனே பட்டீ மே ஆயே ஹேன், இஸ் சந்தியா காலீன் சத்ர மே ஆப்கா ஏக பார் புனா பஹுத் 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 ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. பாயோ பஹனோ, லௌகிக் மே ஹம் சுன்தே ஆயே ஹேன் கி ஜஹா ந பஹுஞ்சே ரவி வஹா பஹுஞ்சே கவி, ஔர் ஜஹா ந பஹுஞ்சே கவி வஹா பஹுஞ்சே அனுபவி. தோ ஐசே ஹமாரே மத்ய ஹம் சப்கே ஆதர்ணீய ராஜயோகினி பிராதஸ்மரணீய தீதி ஜி அப்னே அனுபவ கி கான் லேகர் உபஸ்தித் ஹுயி ஹே. தீதி ஜி கபி ஆப் சப்கே தரப் சே பஹுத் 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 ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. ஹம் சபி பாபா கே பச்சே ஔர் பூரே சன்சார் கி ஆத்மாயே பகவான் கோ பாபா கோ அலக் அலக் நாம் சே யாத் கர்த்தே ஹேன். கோய் உன்ஹே காட் கஹதா ஹே, கோய் அல்லா கஹதா ஹே, கோய் குதா கஹதா ஹே, கோய் ஈஸ்வர் கஹதா ஹே, சபி யாத் கர்த்தே ஹேன். லேகின் சன்சார் மே குச் ஐசே கினே சுனே லோக் பி ஹேன் ஜின்ஹே ஸ்வயம் பகவான் யாத் கர்த்தே ஹேன். ஔர் உன் கினே சுனே மே சே ஹமாரி தீதி ஜி பி ஏக் ஹே. ஆப் சப் நே தீதி ஜி கே பாரே மே கல் பி குச் பாத்தே சுனே. ஸ்வயம் பகவான் முரளி மே சாகார் பாபா அவ்யக்த பாப் தாதா பி தீதி ஜி கோ அனேக நாமோ சே உபாதியோ சே சுசோபித் கர்த்தே ஹேன். கபி நிர்மலா பேட்டி கேத்தே ஹேன், கபி நிர்மல் ஆசிரம் கேத்தே ஹேன், கபி நிர்மல் ஃபூல் கேத்தே ஹேன். ஐசே ஸ்வயம் பகவான் நே ஆப்கோ அனேக உபாதி சே சஜாயா ஹே, சமாரா ஹே. ஆப் சப்கோ மே தீதி ஜி கே பாரே மே ஏக ஔர் பாத் பதா தேனா சாஹதா ஹூ. சாகார் பாபா கே சமய ஜப் யக்ய மே மதுபன் கே அலாவா கஹீ பி அப்னா குத் கா சேவா கேந்திர நஹீ தா, சப் ஜகா கிராயே கே மகான் சே பாபா கா கர் சென்டர் சல்தா தா. உன் தினோ தீதி ஜி கே லௌகிக் பிதா ஜி நே ஜோ சாகார் பாபா சே மிலே தே, பல் பூர்ணதா ஜ்ஞான் மே நஹீ சல்தே தே, லேகின் பாபா சே மிலே தே, மம்மா சே மிலே தே. அண்ட் உன்கே பிதா ஜி, தீதி ஜி கே பிதா ஜி நே உன் தினோ பாபா கே லியே பஹலா பஹலா மகான் பனா கர்கே தியா. யே யக்ய மே பஹலா மகான் ஹே ஜோ அப்னா குத் கா பாபா கா மதுபன் கே அலாவா ஹுவா தா. ஐசே பரிவார் மே பலி படி ஹமாரி தீதி ஜி ஹே. ஆப் தாதியோ கே சமகக்ஷ ரஹி, வர்த்தமான் சமய ஹம் சப் தேக் ரஹே ஹேன் யக்ய மே தாதியா தோ கம் ஹோ கயி, லேகின் தீதி ஜி நே தாதியோ கே சாத் ரஹ கர்கே மஹான் பாட் பஜாயா. தோ இசிலியே ஆப்கோ அபி வர்த்தமான் சமய ஆப் ஹமாரே தாதியோ கே சமகக்ஷ தாதியோ கே ஸ்தான் பர் ஆப் சயுக்த முக்ய பிரசாசக கே ரூப் மே யக்ய மே அப்னி சேவாயே தே ரஹே ஹேன். ஹம் மே சே அனேக் லோக் சாகார் பாபா கோ மம்மா கோ நஹீ தேக் பாயே, ஔர் கை பார் மன் மே ஐசா ரஹதா ஹே கி காஸ் ஹம் பி சாகார் பாபா கே சமய ஜ்ஞான் மே ஆயே ஹோதே, சாகார் பாபா கோ இன் நயனோ சே தேகே ஹோதே, மம்மா கோ தேகே ஹோதே. லேகின் அப் பி ஹம் சப் பாக்யசாலி ஹேன், ஜப் பி ஹம் தீதி கோ தேக்தே ஹேன், தீதி சே மில்தே ஹேன், தோ ஐசா லக்தா ஹே ஜேசே இன் வரிஷ்ட ஆத்மாவோ கே அந்தர் பாபா ஔர் மம்மா கா மிஸ்ரண ஹே. ஐசா லக்தா ஹே ஜேசே இன்கே ஆன்கோ சே ஹம் சாகார் பாபா கோ தேக் லியே, மம்மா கோ தேக் லியே, க்யோங்கி தீதி சாகார் பாபா கே சாத் பலி படி, மம்மா கி பாலனா மே பலி. தோ ஐசி दीदी जी जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे मध्य आए हैं, एक बार पुनः दीदी जी का बहुत 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 स्वागत है। आज वैसे दीदी जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे सुनेंगे दीदी जी के ही मुख से, क्योंकि हम सबको अपना जब भी किसी को मिलते हैं जुलते हैं तो अनुभव सुनने की बहुत इच्छा रहती है। इसी क्रम में आज हम दीदी के पूरा जीवन वृत्तांत के बारे में सुनेंगे, जितना भी समय हमारे पास रहेगा तब तक। तो दीदी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना ईश्वरीय बचपन, आप ईश्वरीय ज्ञान में कब आई, कहां पर आई और कैसे आई?
ओम शांति। मैं ईश्वरीय ज्ञान में 1962 दिसंबर में मुंबई में आई, वाटरलो मैंशन में। तब क्लास चलता था और मुंबई में काफ़ी दादियाँ थी उस समय। वाटरलो मैंशन या कोलाबा में उस समय निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी और घरों में उसी एरिया में रतन मोहिनी दादी, शील दादी रहते थे और ब्रिजेंद्र दादी सायन में रहती थी।
जी जी दीदी, ज्ञान में जब आप आई दीदी, उस समय आपका उम्र क्या था, क्या करती थी आप?
27 साल की उम्र थी उस समय। हमने मेडिकल स्टडी पूरी की थी और मैं हॉस्पिटल में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में सेवा की, क्योंकि मेरा लक्ष्य था मैं गांव में जाके मेडिकल प्रैक्टिस करूंगी। बम्बई में तो बहुत डॉक्टर है, मैंने सोचा कि गांव में जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां जाके सेवा करूंगी। इसलिए बम्बई में मेडिकल डिपार्टमेंट, गायनेक डिपार्टमेंट, डिस्पेंसरी आदि आदि स्थानों पर मैंने जॉब किया और ज्ञान में आने के बाद बाबा के डायरेक्शन अनुसार हमने कांदीवली जहाँ मैं रहती थी वहाँ से 10 मिनट दूर हमने डिस्पेंसरी शुरू की और फिर बाद में वहाँ ही सेंटर के लिए मकान ढूंढा।
जी दीदी, तो इस तरह से दीदी जी का ज्ञान में आना हुआ। दीदी लौकिक में भी डॉक्टर रही। दीदी थोड़ा सा लौकिक परिवार के बारे में जानने की जिज्ञासा है, क्या माहौल था, कितने भाई बहन आप रहे और भी आपके अलावा कोई ज्ञान में चलते हैं दीदी?
लौकिक में हम टोटल 6 बहनें थी, 2 भाई थे और धार्मिक कृति के थे। हमारी माँ और दादी तो पक्के वैष्णव थे, प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे मेरी माँ, और बाहर का बाजार का भी मेरी लौकिक माँ नहीं खाती थी। पिताजी भी धार्मिक विचार के थे परंतु वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे और चिन्मयानंद आदि के लेक्चर सुनने जाते थे। यदि मुझे छुट्टी होती थी तो मैं भी उनके साथ जाते थे। वहाँ भक्ति प्रधान थी तो वो सप्ताह रामायण आदि आदि में जाती थी। तो उन दिनों में मुंबई में रामचंद्र डोंगरे महाराज की कथा चलती थी
जी।
तो माँ के साथ हम भी जाते थे।
परिवार में कोई ज्ञान में है दीदी? परिवार में कोई?
परिवार में मम्मा बाबा से हमारे माँ बाप दोनों मिले
जी।
परंतु उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, सिर्फ हमारी बहन का लड़का ज्ञान में था। परंतु उसने अभी कोविड में शरीर त्याग किया
जी। दीदी दीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप साकार बाबा से मिले हैं, पहली बार का मिलन का अनुभव सबको याद रहता है दीदी। आप बाबा से पहली बार जब मिली साकार बाबा से, तो वो पहली बार का मिलन का अनुभव थोड़ा साझा कीजिए दीदी।
मम्मा से हम पहले दिन मिले, उनके लेक्चर में मैं सेंटर पर गई थी। संडे संडे मम्मा उन दिनों में सेंटर पर प्रवचन करती थी और ब्राह्मण अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाते थे। पर ब्रह्मा बाबा से मैं 1.25 साल के बाद जब मधुबन आई तब मिली। उसके पहले जैसे भी ज्ञान में आई बाबा से पत्र व्यवहार करती रही, क्योंकि उन दिनों में जैसे भी हमको निश्चय होता था तो दादियाँ कहती थी बाबा को पत्र लिखो, अपना परिचय दो। तो ज्ञान में आने के बाद 15 दिवस में पत्र लिखा, अपना परिचय दिया। फिर 1 मास के बाद कहा अपने कर्म कहानी लिखो कि जीवन में क्या क्या आपने पाप किया है, तो वो भी लिखा और हमने अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजा। और बाबा ने जैसे कि हमको फोटो से ही पहचान लिया
जी।
तो जब मैं पहली बारी मधुबन में आई बाबा से मिली तो जैसे ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई पहली बार आई हूँ, बाबा को पहचानती ही थी ऐसे फील हुआ
जी।
और लौकिक से भी अधिक प्यार और रिस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा के साथ था। तो बाबा से हम लोग आते ही पहले स्नान पानी करके बाबा से मिलते थे, क्योंकि ट्रेन में ही आना जाना होता था। और फिर दोबारा गिफ्ट लेने के लिए बाबा से मिलते थे। और तीसरी बारी जब जाना होता था बाबा से कम सुन टोली लेते थे। तो जैसे बाबा से हमारा रूहानी प्यार और रिस्पेक्ट था और बाबा की गोद का सुखद अनुभव भी प्राप्त किया
जी। दीदी इस तरह से आप भाग्यशाली हैं दीदी, जो साकार बाबा से मिली, उनकी पालना में पली, प्यार मिला। और जैसे दीदी जी बता रही कि लौकिक से भी अधिक प्यार आपको बाबा से मिला। दीदी जैसे हम सब सुने हैं 71 में जब आप पहली बार विदेश यात्रा में गई, और आप सबको ज्ञात हो 5 लोग उसमें से गए थे, उसमें दीदी भी साथ में गई थी। आप भारत की संस्कृति में पली बढ़ी, आपको जैसे बताया आपने बाल्यकाल से गांव में जाकर सेवा करने का एक संकल्प था, अब विदेश में गई तो वहां की संस्कृति से, वहां के कल्चर से, वहां के स्वभाव संस्कार से आपने कैसे अपने को मिलाया दीदी, कैसे ढाला अपने को?
तो सबसे पहले मैं लंदन में सेवा स्थान पर रही, मतलब हमने टिकट तो बनाई थी वर्ल्ड टूर की 71 में, परंतु आधे में अमेरिका से ही वापस लौटी क्योंकि लंदन वालों ने मकान ढूंढा था और मकान मिलने वाला था
जी,
परंतु मकान मालिक है उसने जो दूसरा मकान बनवाया था वो तभी तक तैयार नहीं हुआ था। तो मैं दो घरों में रही ब्राह्मणों के, वहाँ सेवा की, और फिर जब मकान मिला तो वहाँ सेटल हुई। बहुत कल्चर में फर्क
जी।
यहाँ हमने जब बम्बई छोड़ा उस समय हमारे पास काफी स्टूडेंट थे
जी,
साथ में एक माता और एक बहन भी थी, तो मुझे कोई खास कर्मयोग करने का मौका नहीं था क्योंकि मैं डिस्पेंसरी भी चलाती थी, सेंटर पर भी रहती थी, पर वहाँ तो सब कुछ अपने हाथ करना पड़ता है, नौकर चाकर नहीं
जी।
घर की सफाई, शॉपिंग, कुकिंग, बर्तन साफ करना, सब कुछ करना पड़ा। वो तो ठीक था। फिर अंग्रेजी में भाषण करने की इतनी आदत नहीं थी
जी,
तो वो भी तैयार करना पड़ता था एक दो बार लिख कर। फिर क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हाथ में पेपर लेकर नहीं भाषण करो, ऐसे ही करो
जी,
तो इसलिए अंग्रेजी में तैयार करनी पड़ती थी। एक दो बार नया स्थान पर कोई ले जाता था, पीछे कहता था अभी तो आप आज जाओ खुद ही, बस ट्रेन लेकर इधर उधर जाना पड़ता था, शॉपिंग करके सब्जियां वगैरह खरीदते जाना पड़ता था। तो समझो कल्चर डिफरेंस, यहाँ इतनी बिजी रहती थी सेंटर डिस्पेंसरी में, और वहाँ तो हफ्ते में दो दिन क्लास चलता और चार माताएं आती थी, दिन में दो से चार और पूरा क्लास या तो सैटरडे या तो संडे
जी,
सैटरडे आता था संडे नहीं और सैटरडे शाम को आता था, फिर खाना खा के जाता था, तो खाना पकाना भी होता था उनों के लिए। तो मतलब कल्चर तो बहुत डिफरेंट
जी,
और वायुमंडल बहुत खराब क्योंकि वहाँ तो ट्रेन में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाके पहन कर, कई बार भाई के गोद में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है, तो वातावरण बिल्कुल खराब था
जी। तो ऐसे हम सब समझ सकते हैं दीदी, कैसे परिस्थितियों में आपने सेवा किया। आप सबको दृश्य सामने आ रहा है कैसे दीदी जी अकेली खुद खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कोर्स कराना, कोई ब्राह्मणी नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, तो ऐसे विदेशी संस्कृतियों के बीच भी दीदी जी ने बाबा का सेवा किया, और आज जो स्वरूप देख रहे हैं दीदी जी के, ऐसे दीदियों के त्याग तपस्या का प्रतिफल है। आज तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे परिवेश में कोई सेवा भी कर सकते हैं। हर एक को सुविधाएं चाहिए, लेकिन उस समय बाबा की आज्ञा प्रमाण दीदी जी ने वहां जाकर के सेवा किया। दीदी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बार बाप दादा ने बड़ी दीदी को कहा था कि ऐसी 30 कुमारियां मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। वो किस संदर्भ में कहा था दीदी, और क्या आपको उस समय कौन सी विशेषता के कारण बाबा ने आपके लिए ऐसा कहा था?
ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि को कहा था
जी।
वो मैं मिली बाबा से
जी।
और मैं चली गई, फिर बाबा ने दादी को कहा, क्योंकि बाबा ने देखा कि मेरे में पवित्रता का गुण है
जी।
मैं डॉक्टर होते भी सरेंडर हो गई
जी,
क्योंकि ज्ञान में आते ही, निश्चय होते ही हमने अपनी कमाई का 90% हिस्सा
जी
यज्ञ देना शुरू किया
जी। दीदी
ज्ञान में आते 62 में, उसके पहले इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा था
जी।
तो हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, जॉब करते थे, सबको कहा कि आपकी कमाई में से आपको जो नेशनल डिफेंस फंड के लिए देना चाहते हो वो आप दो। तो मैं 90% मेरी इनकम उस समय नेशनल डिफेंस फंड में देती थी ज्ञान में आई तब। फिर ज्ञान में आई मैंने कहा अभी नेशनल डिफेंस फंड में सिर्फ 10% देंगी, बाकी 80% यज्ञ में देंगी, 10% अपने पास रखेंगे। तो बाबा ने देखा कि मैं जल्दी ही सरेंडर हो गई और बाबा से राय सलाह लेकर अपना जीवन का फैसला करती थी।
तो ऐसी हमारी दीदी जी, जिनके लिए ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ऐसी अगर 30 कुमारियां मिल जाए, बड़ी दादी को कहा था, तो चुटकी में स्वर्ग ला दूं। तो मैंने लॉकडाउन के समय दीदी जी से अनेक बार पूछा कि 30 में एक तो आप मिल गई, लेकिन 29 कहां है? तो हो सकता है अभी तक आए ना हो, इसलिए स्वर्ग ना आ रहा हो। और पर्सनली भी आप लोग दीदी से पूछ सकते हैं, हो सकता है बता दे आप लोगों को। दीदी एक चीज और जानना चाहते हैं कि डायमंड हॉल में सभा के बीच प्यारे बाबा ने आपको स्टेज पर बुलाया था, वो दृश्य हम सबके आंखों के सामने है। बाबा अव्यक्त बाबा मुरली चलाने के बाद दृष्टि दे रहे थे, और उन बीच में आपको इशारा करके इस सभा के बीच में स्टेज पर बुलाया, और स्वयं भगवान ने अपना वरदानी हाथ आपके सर पर रखा। वो क्या फीलिंग रही, और कैसे आपको पता चला कि बाबा मुझे स्टेज पर बुला रहे हैं?
ओम शांति। मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ ज्ञान सरोवर के सेवा में आई। मनोहर दादी ने नवंबर में अपना भौतिक शरीर छोड़ा तो मुझे बुलाया गया कि आप यहाँ सेवा के लिए आओ, तो मैं आ गई। दो तीन बारी तो आने के बाद बाबा से मिलन हुआ, बाबा ने कुछ कहा नहीं
जी।
तो मुझे सरप्राइज हुआ कि बाबा ने कुछ कहा नहीं, परंतु जिस दिन बाबा ने स्टेज पर बुलाया तो मैं समझ नहीं पाई कि सचमुच स्टेज पर जाना है या नहीं। तो मधुबन की मोहिनी बहन वहीं बैठी थी, मैंने पूछा क्या भाई जाऊं स्टेज पर? तो कहा हाँ हाँ जाओ। तो जाकर बाबा से मिली, तो ये एक बहुत सरप्राइज था
जी,
आश्चर्यचकित हो गई
जी।
और नेचुरली है, खुशी का पार नहीं रहा, परंतु मेरे से भी ज्यादा खुशी ज्ञान सरोवर वालों को हुई। और जो भी एशिया के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत खुशी हुई कि बाबा ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया
जी। सचमुच वो दृश्य बहुत ही सुखद था। हम सब ने देखा था, डायमंड हॉल में बाबा मिलन कर रहे थे और दीदी जी को बाबा ने स्टेज पर बुलाया और अपना दोनों हाथ दीदी के सर पर रखे थे। और जैसे दीदी जी बता रही कि जितनी खुशी दीदी जी को हुई उससे ज़्यादा खुशी सचमुच हम सब जो ज्ञान स्वर में समर्पित हैं सभी भाई बहनों को हुई थी। और बहुत आत्मिक अनुभूति हुई थी और सबके एक प्रकार से प्रेम के आंसू जैसे आ गए थे वो दृश्य देखकर। दीदी, इससे हटकर एक दूसरा प्रश्न आपसे है कि बड़ी दादी जी ने आपको एक बार शेरनी की उपाधि दी थी, वो कैसे आपको शेरनी कहा था, किस संदर्भ में कहा था दीदी?
मैं 75 में पहली बारी ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया का जब वीसा पूरा हुआ तो मुझे एक ब्राह्मण भाई ने कहा आप यहाँ तक आए हो
जी,
तो न्यूजीलैंड फिजी भी जाओ क्योंकि वहाँ बहुत इंडियन है। तो मैंने टिकट बनवाई और सब संस्थाओं को, इंडियन एसोसिएशन की संस्थाओं को लिखा मैं आ रही हूँ, मेरे लिए कुछ रहने का या खाने पीने का प्रबंध होगा। तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी से निमंत्रण आया कि भले आओ, तो मैंने अकेले न्यूजीलैंड फिजी का चक्कर लगाया और न्यूजीलैंड में जिस परिवार के साथ रही
जी
वो परिवार का भाई तो ज्ञान में था और रोज मुरली सुनता था, कोर्स किया आदि, पर उसकी युगल ज्ञान में नहीं थी। तो और लगता था
जी
कि जिस घर में मैं मुरली सुनाती हूँ वो घरवाली ही क्लास में नहीं आती हैं। तो फिर मैंने दादी को लिखा कि अकेली ऐसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ और इतना सहयोग नहीं है
जी।
तब दादी ने लिखा कि देखो हाथी है झुंड में घूमता है, शेरनी है अकेली घूमती है, तो तुम शेरनी जैसे हो।
तो हम सब समझ सकते हैं भाई बहनों कैसे दीदी जी ने ऐसी विकराल परिस्थितियों में सेवा की। एक बार दीदी जी ने कहा था कि न्यूजीलैंड जब गई थी रात को 1 बजे और जो लेने वाला भाई आया था वो लेट आया, फिर वो लंबी कहानी है। तो ऐसे अनेक सेवाओं के विस्तार करने में दीदी जी की प्रमुख भूमिका रही है। देश विदेश में सेवा केंद्र आज जो दिख रहे हैं उसमें अकेली कई देशों में दीदी जी ने सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी है। दीदी जी अब एक बहुत गंभीर प्रश्न आपके लिए है। हमने सुना है आप धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल में बैठी की दीदी, यहाँ पर तो कभी कभी थोड़ा कड़क रहती हैं आप, हम देखते हैं आपको थोड़ा डर सा लगता है कई बार। आज भी एक माता सो रही थी उसके कहा कि पीछे बैठा करो, ऐसे अनेक कहानी है। लेकिन हमारी इच्छा है दीदी आप जब धर्मराजपुरी में रहेंगे तो थोड़ा हल्के रहेंगे।
देखो धर्मराज की पुरी में नेचुरली ट्रिब्यूनल बैठेंगे, एक तो नहीं होगा
जी दीदी,
वो ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे। ट्रिब्यूनल में मैं भी
जी
जो मेरे संपर्क वाले हैं उनकी मैं
जी
ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। तो नेचुरली है हम लोग फैसला करेंगे और सजा तो धर्मराज देगा।
थोड़ा बहुत पक्ष ले लेंगे ना दीदी हम लोग का।
और क्या है कि मेजोरिटी ब्राह्मण को सजा तो यहाँ मिल जाएगी
जी दीदी,
क्योंकि विकर्मों का जो बोझा है वो उसका समझो जो दुख सहन करना है, चाहे शारीरिक बीमार चाहे संबंधों में थोड़ी डिफिकल्टी चाहे संपत्ति में डिफिकल्टी, ये सारा कर्मों का हिसाब है वो यहाँ भोगना होगा। बाकी कुछ थोड़ा कुछ रहा होगा वो ब्राह्मणों को धर्मराजपुरी में
जी
सजा भोगनी पड़ेगी।
तो आप सबको ये जानकारी हो कि दीदी जी वो ट्रिब्यूनल में बैठेगी, तो किसी को भी पर्सनली संबंध संपर्क करना हो तो भी आप कर सकते हैं। दीदी अगला प्रश्न है, गुलजार दादी जी के अव्यक्त होने के पश्चात कहां कहां तीसरे रथ की भी चर्चा होती है, फलाने में बाबा आया फलाने में मम्मा आई और कई जो नए नए भाई बहने कई बार मुंझ जाते हैं दीदी, और कहीं कहीं देखने में आता है पुराने भी मुंझ जाते हैं। तो आप जो आज भाई बहने बैठे हैं या चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको बाबा की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
बाबा ने कभी नहीं कहा है
जी
कि मैं तीसरा रथ लूंगा
जी।
तो ये जो कहते हैं हमारे में बाबा आते हैं ये गलत है, और कई हैं वो भावना वाले
जी
उसमें फंस जाते हैं, और ये बहन तो बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, भोजन खिलाती है
जी।
तो भोजन के लिए तो आपको मालूम है, जहाँ भोजन मिलता है वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं
जी।
तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए
जी।
बाबा ने कहा है मैं मधुबन में ही आऊंगा
जी,
और मेरा रथ मैं ही चुनूंगा
जी। दीदी
तो अभी जो इधर उधर रहते हैं, रायपुर के तरफ रहती है
जी,
और इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, ये गलत है
जी।
इसमें फंसना नहीं चाहिए। शिव बाबा को ब्रह्मा द्वारा
जी
और गुलजार दादी द्वारा ही मिलने का पाठ था
जी।
अभी वो पाठ पूरा हुआ
जी दीदी।
अभी सिर्फ बाबा ऑनलाइन हम मिलते हैं
जी दीदी,
और उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है
जी।
और यहाँ भी कल इन्हों का
जी दीदी
बाबा से मिलन है, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा अनुभव होता है मधुबन में, जो आपको सरप्राइज होगा। और बहुत लोग हैं जब अपना अनुभव सुनाते हैं
जी,
तो कहते हैं कि हमारे तो आँख से बस आंसू ही चले जाते थे बाबा मिलन के
जी। दीदी तो दीदी जी का ये सुंदर संदेश सभी को ध्यान में रहे कि बाबा केवल मधुबन में आते हैं और मधुबन से ही बाप दादा के द्वारा पालना मिलती है। ये सुंदर संदेश हम सबको ज्ञात रहे। कोई भी इधर उधर की बातें अगर सुनाते भी हैं तो उन बातों पर विश्वास न करें, दीदी जी अपने अनुभव के आधार पर सुना रही है। दीदी एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि आप बॉम्बे जैसे माया नगरी में रही और 27 साल की उम्र में आप बाबा के ज्ञान में आई, फिर विदेशी संस्कृति में रही, आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्तिगत मायावी बातें आई हो जिस पर आपको विजय प्राप्त करना पड़ा हो और आपको कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ा हो जिससे हम सब सीखे दीदी आपके द्वारा?
लकीली बचपन से ही हमारे में पवित्रता के संस्कार थे
जी।
मुझे शादी नहीं करनी थी। 17 उम्र में हमारी सब बहनों की सगाई हो गई थी और मुझे भी पूछा गया और मेरे लिए लड़का ढूंढना हमारे माँ बाप ने शुरू किया। तो मैंने कहा कि या तो मैं मेडिकल स्टडी करूँगी या तो शादी करूँगी, क्योंकि सगाई करते हैं उन दिनों में तो 1952 में सगाई करेंगे, फिर कहेंगे जल्दी जल्दी शादी करो, फिर बच्चे पैदा होते हैं
जी।
और बच्चों को संभालें या स्टडी करें या सेवा करें। तो मैंने कहा कि मेडिकल स्टडी करके बच्चों को ही संभालने का मैंने मंजूर करती हूँ, इसलिए आप मुझे दो में से एक तरफ जाने दो। तो मेरे लड़के के पिता ने कहा भले तुम स्टडी करो और हमारे संस्कार कुछ ऐसे डाले थे किसी भाई से बात नहीं करनी।
जी दीदी,
इतने तक कि मेडिकल कॉलेज में स्टडी करते समय हमारा जो माइक्रोस्कोप था
जी,
उसमें मेरा पार्टनर भाई था
जी,
क्योंकि कॉलेज में सरनेम अनुसार एक के बाद एक को खड़ा रखते थे। तो मैंने कभी उस भाई से बात भी नहीं की और कोई भी भाई उनसे बात नहीं की
जी।
तो इसलिए माया आने का मार्जिन नहीं था, विघ्न जरूर आए
जी, जी, जी।
सेवा में विघ्न जरूर आए
जी, जी, जी।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हम थे तो 5-7 साल सब नए स्टूडेंट थे, सब में बहुत उमंग उल्लास था कि हम सेंटर पर रहे, सेंटर इंचार्ज बने और सेवा करें। तो नए नए थे तब उमंग उल्लास था। फिर 7 साल के बाद उनको माया आई, कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमें ये इंडियन ड्रेस कुर्ता पैजामा क्यों पहनना, आप लोग क्यों पहनते हो, इंडियन संगीत क्यों बजाते हो, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो म्यूजिक था, कहे आप क्यों इंडियन सॉन्ग बजाते हो, उसका अर्थ हम समझते नहीं, भोग क्यों लगाते हो, ये सारे भक्ति है। तो सेंटर वाले ही कुछ भाई बहन हमारे साथ ये बहस 1 साल तक करते थे, हर 15 दिन उनके साथ मीटिंग होती थी और वो विरोध करते थे
जी, दीदी।
हमने कहा और कहा कि आप तो हमें इंडियन मोल्ड में मोल्ड करते हो, इंडियन बना देते हो
जी,
हम तो ब्राह्मण बनने आए। तो 1 साल तक चलता रहा, मैं और चार्ली एक तरफ
जी,
और वो 10 भाई बहने दूसरी तरफ
जी।
तो कई थे पुराने, वो कहे हम तो मधुबन की यादगारों को ही ट्रैफिक कंट्रोल म्यूजिक बजाएंगे
जी,
पर कई है ये सामना करते रहे। फिर दादी आई तो उसने सबको समझाया कि ये इंडियन कल्चर नहीं है, ब्राह्मण कल्चर है, आप ब्राह्मण हो
जी,
तो ये ब्राह्मणों का सब रीत रिवाज है, परंतु जिन्हों को पसंद नहीं था वो भगंती हो गए
जी। दीदी, तो इस तरह के अनेक पेपर आए, लेकिन जो मेरा पूछने का लक्ष्य था कि दीदी वास्तव में पवित्रता की अवतार रही शुरू से। दीदी जी ने अनेक बातें बताई है, शेयर किया है, कुछ कुछ पर्सनल बातें भी, इसे पता चलता है कि दीदी का पूरे जीवन में कभी भी कहीं आकर्षण नहीं हुआ और सदा निर्विघ्न और प्यूरिटी को अपने अंदर पूरा धारणा मूर्त बन करके अब तक चल रही है। दीदी आपने साकार बाबा मातेश्वरी जी अनेक दादियों के साथ, बड़ी दादी के साथ भी कुछ समय रही होगी, जानकी दादी के साथ, सबके साथ आपने थोड़ा थोड़ा समय पाठ बजाया रहे, ज्यादा मजा आपको किसके साथ आया?
वास्तव में मैं किसी के साथ रही नहीं हूं
जी।
मम्मा भी क्लास कराते थे, क्लास में जाते थी, मधुबन भी आती थी, तो 5-7 दिन रहकर वापस जाती थी। एक भी दादी के साथ मैं रही नहीं हूँ
जी दीदी।
शुरू में जैसे मैंने बताया, दादी निर्मल शांता, दादी पुष्प शांता, दादी प्रकाशमणी, वो वहाँ की इंचार्ज थी
जी।
और शील दादी हमारी मेंटोर रही, मतलब दादियों ने क्या किया, एरिया बांट ली। रतन मोहिनी दादी घाट को ऊपर जाती थी, ब्रिजेंद्रा दादी तो थी ही सायन में, और मेरे पास शील दादी मास में एक बार आ जाती और रोज फोन करके हालचाल पूछती थी, मैं बताती थी। तो इसी रीत से दादियों का संपर्क रहा, परंतु साथ में रहने का मौका नहीं मिला। और सब दादियों से विशेष प्यार था और उन्होंने पाला भी दी। मम्मा से मिली, बाबा से मिली, दादियों से मिली। और जब से विदेश में दादी जात की आई 74 में, तब से दादी जैसे कि हमारी कंट्रोलर रही
जी दीदी।
और दादी भी यहाँ, जानकी दादी यहाँ आ गई, परंतु दादी भी ज्यादा पांडव भवन
जी
या शांतिवन में रहती थी
जी।
यहाँ आती थी, 2-4 दिन रहती थी कभी कभी। तो सीरीज से मैं कहूँगी पाला सब दादियों से मिली, पर साथ में रहने का
जी
मौका नहीं मिला
जी दीदी। अगला प्रश्न है दीदी, वर्तमान समय बहुत से भाई बहने जो नए नए ज्ञान में आ रहे हैं, खास करके 2017 के बाद जो बाबा का पार्ट, अव्यक्त बाबा का भी पार्ट साकार में गुलजार दादी के माध्यम से चलता था वो पूरा हो गया, दादियां भी कम हो गई। अब जो नए भाई बहन हैं, उन्हों को दादियों की अनुभूति वो कैसे करें, दादियों के जैसे फीलिंग जो आप लोगों ने किया है वो सब कैसे अनुभव करें दीदी, उनको कमी महसूस होती है?
ओम शांति। हर एक का अपना अपना पाठ है
जी।
कईयों को मम्मा बाबा के साथ 14 साल रहने का भाग्य मिला और ज्ञान योग की पट्टी की। हम लोगों को मम्मा बाबा दादियों की पालना मिली। अब दादियों का लक्ष्य था कि जो हमें बाबा से मिला है वो मुझे सबको देना है, इसलिए दादियों ने जीवन और समय सफल किया इस लक्ष्य से। अभी सिर्फ दीदियां रही है
जी।
तो दीदियां भी लक्ष्य रखती हैं कि जितना हो सके सबको, हमें जो पालना मिली है वो पालना देनी है
जी।
तो वो मम्मा बाबा जैसी या दादियों जैसी तो नहीं हो सकती, परंतु हम लोग कोशिश करते हैं कि औरों को भी दे। माँ की मैं सजेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी जो आदिदेव की बुक है वो जरूर पढ़े, जिसमें ब्रह्मा बाबा ने कैसे दादियों की पालना की और दादियों ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया
जी।
एक मामा की है और एक ब्रह्मा बाबा की
जी, जी, जी।
वो पढ़ने से भी काफी फायदा होता है।
बहुत अच्छा दीदी, ये हम सबके लिए सुंदर संदेश है जो नए नए बाबा के बच्चे बने हैं उन्हें, कि बाबा के बारे में जो बुक बने हैं, दादियों के अनुभव के बारे में जो बुक बने हैं, वो सब पढ़ने से भी वो फीलिंग आती है जो दादियों ने किया है। दीदी आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर नजर डालते होंगे, इतना लंबा काल आपने बिताया, ऐसी कोई विशेष अनुभूति दीदी जो आपके एकदम दिल में बसा रहता होगा कि ये भूलते नहीं होंगे, कोई ऐसी अनुभूति?
ऐसी कई बातें हैं जो पालना मिली वो यादगार है
जी।
कोई विशेष ऐसी बात
जी
नहीं है
जी,
पर कई विशेष है
जी,
विशेष भी है
जी,
और ऐसी स्पेशल विशेष नहीं है जो एक ही हम बताएं कि ये बात हमें बहुत अच्छी अनुभूति की हुई, क्योंकि मम्मा से जो मिला, दमा बाबा से जो मिला, अव्यक्त बाप दादा से जो मिला
जी,
क्योंकि अव्यक्त बाप दादा द्वारा कितना साल
जी
हम लोगों को पालना मिली, 1969 से 2017 तक
जी
अव्यक्त बाप दादा और ज्यादातर शुरू शुरू में पर्सनल ब्लेसिंग मिलते थे, फिर ग्रुप में ब्लेसिंग मिलते थे, फिर दृष्टि मिलती थी। तो क्योंकि 2009 से मैं यहाँ हूँ तो 2009 से 2017 तक तो बाबा से पर्सनल भी मुलाकात हुई और इतने ब्लेसिंग मिले
जी
जो दिल भर गया
जी। दीदी दीदी आपका इतना बड़ा कारोबार चलता है देश विदेश का, और यहाँ का भी हम देखते हैं आप सब ईमेल में भी जवाब देते हैं, और अनेक देशों के कारोबार भी आप देखते हैं। रात को जल्दी नींद आ जाती दीदी आपको?
क्या
नींद जल्दी आ जाती?
नींद तो आ जाती है। बाबा कहते हैं जितनी सर्विस करेंगे ना
जी
उतनी अच्छी नींद आएंगी
जी। दीदी तो हम सब समझ सकते हैं दीदी का इतना कारोबार होते हुए भी दीदी जैसे बता रही है कि जैसे बेड में जाते ही दीदी जी को नींद आ जाती है। एक प्रश्न और है दीदी जी। दीदी
चिंता नहीं,
चिंता नहीं है जी।
प्रकाशमणि दादी थी ना, हम उसको पूछते थे कि दादी आप सदैव हर्षित कैसे रहते हैं
जी।
और दादी प्रकाश मणि को तो बेड में जाती थी एक दो मिनट में नींद आ जाती थी। तो दादी कहे मैं निमित्त
जी,
मैं यज्ञ नहीं चलाती हूँ, चलाने वाला करावनहार शिव बाबा है
जी।
मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त बनकर दादी सेवा करती थी तो नींद जल्दी आ जाती थी
जी। दीदी बहुत अच्छा, दीदी आपने दादियों की बात सुना करके हम सबको भरपूर किया। एक प्रश्न दीदी, वैसे तो आप, मैं कई बार आपसे मिलता हूँ तो आप ऐसे भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप बाबा से बात करते होंगे, अमृत बेला नुमा शाम को आप निमित करते हैं, बाबा से पूछते हैं दीदी कभी सतयुग कब तक आएगा?
मैं पूछती नहीं हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं आप ही घड़ी हो
जी,
आप ही जब तैयार हो जाएंगे सतयुग आ
जाएगा।
मैं तो वेट कर रहा हूँ
जी दीदी
कि आप तैयार हो जा।
हम
लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया है, बाप समान बने नहीं है
जी,
तो इसलिए विनाश रुका है
जी।
बाकी एटॉमिक बॉम्ब्स तैयार है, नेचुरल कैलेमिटीज होती रहती है, रियल सत्य होता रहता है
जी।
अभी भी रशिया यूक्रेन की युद्ध एक साल से चलती रहती है, तो विनाश की तो तैयारियां हैं, स्थापना की तैयारी नहीं पूरी हुई है
जी। जो भाई बहन घर गृहस्थ में रहते हैं दीदी, समाज में सबके बीच रहते हैं, बाबा के बच्चे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबको कि कैसे अपने परिवार में खुशहाली रखें, अपने योग की यात्रा को अच्छा बना करके कैसे रखें, आप सबको अपने तरफ से क्या शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देना चाहते हैं?
गृहस्थ व्यवहार में रह के बैलेंस रखें
जी,
ताकि स्वसेवा भी हो विश्व सेवा भी हो, परिवार भी खुश रहे
जी दीदी,
क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी निभानी है। बाबा घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते, वो तो शुरू में भट्टी बननी थी तो माता बहनों ने घर बार छोड़ा, अभी तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ, माया जीत बनो तो जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा की तो शुभ आशा है कि सब बच्चे सतयुग के विश्व के मालिक बने। फर्स्ट नंबर तो फिक्स हो गया है
जी,
पर फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करो जी।
बहुत 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 दिल से धन्यवाद दीदी जी को, आप अपने जीवन की यात्रा के साथ हम सबको पूरा भ्रमण करा दिए। दीदी जी के लास्ट में और दो छोटी छोटी विशेषताएं सुना देना चाहता हूँ। दीदी जी हमारी एका नामी के बहुत अवतार हैं, आप सबको ज्ञात हो दीदी जी अपना कोई भी भोजन का कना दाना वेस्ट नहीं करती है, नाश्ता लेकर के जो भाई लेकर के जाता है, नाश्ता अगर बच गया तो दोपहर को खाना उसको खाती है, दोपहर को बच गया तो शाम को खाती है, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी विशेषता। और इसके अलावा कभी भी हम फोन करें दीदी हमेशा अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है, और अगर मान लो फोन अटेंड नहीं कर पाई तो कॉल बैक करती है। इतनी व्यस्त होते हुए भी दीदी जी की ये महानताएं हैं, विशेषताएं हैं, आप अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाले, आप सबके लिए, आप सबके तरफ से, बाप दादा की तरफ से दीदी जी का एक बार पुनः बहुत 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 दिल से आपका आभार दीदी। अभी हम सभी 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे।